حاجي
بابا
حاجي
مرین ایسا ہے نا تمہاری بدھی کی سرپتی بڑی ہوئی ہے جو مہارتی لگتی ہے بولنے کی جو مہارتی لگتی ہے
وہ
اچھی
جو بدھی میں بھرا ہوگا تو باہر نکلے گا ایکٹ سے پتا چلتا ہے نا
دیکھنے میں آئے
پتا چلتا ہے مانے دیکھنے میں بھی آتا ہے سمجھنے میں بھی آتا ہے انوبھو میں بھی آتا ہے جو اندر بھرا ہوا ہوگا وہ ہی باہر نکلے گا
بابا بھکتی مارگ میں بتایا ستی انسویا کا تو دیہت میں کون
भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि ब्रह्मा को विष्णु को शंकर को तीनों देवताओं को जो बड़े के बड़े देवताएं बनने वाले हैं उनको भी बच्चा बनाई दिया पांच सौ सात सौ करोड़ पत्तों का झाड़ है वैरायटी आत्माएं हैं तो कोई आत्मा ऐसी भी तो होगी जो सिवाय एक शिव बाबा के और किसी के प्रभाव में ना आती हो
लेकिन बाबा को
क्या चलाना है
कपड़ा सिलाई जरूर करना
कपड़े की सिलाई जरूर करना है
बाबा ने बोला है
अच्छा सबको कपड़े की सिलाई करना है
मशीन चलाना उनको मैंने मशीन चलाना
हाँ जो भी जो धंधा करते हैं पेट के लिए तो पेट का धंधा हाथों से करें और मनोबुद्धि से बाप को याद करें और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि लौकिक धंधों से ही पेट पूर्ति होती है बाप तो कहते हैं मेरे धंधे में लगे रहने वाले कभी भूख मर नहीं सकते तो ईश्वर की धंधा करेंगे तो ज्यादा बाप की याद आएगी या सिर्फ लौकिक पेट का धंधा करेंगे तो ज्यादा याद आएगी
बाबा मस्जिद का धंधा नहीं करना
ये बात पूछी गई उसका जवाब दो पहले सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के एक दिन दूना रात चौगुना नशा चढ़ाता है
भगवान दत्तात्रेय के तीन मूर्तियों की याद आ रही
है दत्त माने दिया हुआ त्रेय माने तीन के द्वारा माना तीन के द्वारा दिया हुआ तीन है ब्रह्मा विष्णु शंकर यज्ञ के आदि में ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाले कौन थे जो आदि में सो अंत में प्रत्यक्ष होते हैं तो कौन थे वो तीन
आदि के तीन दो माताएं
और एक
बाप
एक बाप उन तीन के द्वारा गुण ग्रहण करने वाला दत्तात्रेय पैदा हुआ कौन था दत्तात्रेय जो गुण ही ग्रहण करता था है अब गुण ग्रहण नहीं करता था कौन हुआ यज्ञ में
राम बाबा
अरे ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा ने किसी के कभी अवगुण नहीं देखे गुण ही गुण देखे परंतु दत्तात्रेय के चित्र में एक और चरित्र दिखाते हैं दत्तात्रेय के चारों ओर कौन से जानवर दिखाए गए हैं है?
कुत्ता
कुत्ते दिखाए गए कुत्तों को पालता था
बाबा
रामायण कैसे झूठ? रामायण तो थी ही झूठ, रामायण तो है ही उपन्यास। बाप कहते हैं उपन्यास और फिल्म देखने से आत्मा की सबसे जास्ती दुर्गति होती है। उपन्यास रामायण जो है, जो अभी हम पढ़ते हैं, वो तुलसीकृत रामायण कौन से युग में लिखी गई है? कलयुग में लिखी गई है, अभी 500 साल पहले। और जो शास्त्र हैं, भागवत महाभारत, ये तो 2-2.5 हजार साल पहले के लिखे हुए हैं, गीता आदि। तो उस समय सत्वप्रधान युग था या अभी सत्वप्रधान युग? तो जिस युग में जो चीज रची जाती है उसमें उतनी सात्विकता होती है।
मामा एक वाड़ी में बोला जो छत्तर
हमको कोई दूसरे के शरीर में प्रवेश करके, दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं करना है, घर वापस जाना है। माना सूक्ष्म शरीर से नहीं प्रवेश करना है या आत्मिक स्थिति धारण करके नहीं प्रवेश करना है? जैसे ब्रह्मा की आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर धारण करके पार्ट बजाए रही है। अभी हमको कौन कौन से शरीर हैं? स्थूल शरीर है और उस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। तो अभी हमें पार्ट नहीं बजाना है ऐसा कि सूक्ष्म शरीर से हम कोई में प्रवेश करके पार्ट बजावे, अभी की बात है। भविष्य में जब हम आत्मिक स्टेज पकड़ लेंगे, सूक्ष्म शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा, उस समय तो आत्मा श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ पार्ट बजा देगी। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि बीज रूप स्टेज में रह करके काम करेगी, जो भी कार्य करेगी सच्चा काम करेगी। इतने बड़े बड़े एटम बम बनाए के रखे हुए हैं, बनाने वाले असुर हैं या देवता हैं? दुनिया का ध्वंस करने के लिए इतनी खतरनाक चीज बनाई हुई है, परंतु बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है उसको नष्ट कर सके या उसका उपयोग कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया ही स्वाहा हो जाएगी, उसमें हम भी स्वाहा हो जाएंगे। तो जो आत्मिक स्टेज वाली आत्माएं होंगी, जिनके द्वारा परमधाम इस सृष्टि पर उतर आवेगा, ऐसी संगठन की पावर होगी कि दुनियावी जो 5 तत्व हैं वो आक्रमण ही नहीं कर सकेंगे। उन आत्मा बनी हुई हुजूम के ऊपर वो जब देखेंगे कि ऐसी संसार छोटा सा हमारा तैयार हो गया, तो जो देवहानियों का संसार है, जो आत्माभिमानी बन ही नहीं सकते, जन्म जन्मांतर उनकी उनके ऊपर कट चढ़ी हुई है देह अभिमानियों की, उनका विनाश कराना पड़ता है। अगर वो विनाश नहीं होवे तो नई दुनिया भी नहीं आ सकती, क्योंकि पतित दुनिया में सब पतित ही कहे जाते हैं और पावन दुनिया में सब पावन कहे जाते हैं, इसलिए पतितों का ध्वंस करना ही पड़े।
पानी में से पार
उतर गए, वो क्या पानी ज्ञान जल का पानी था, ज्ञान का सागर था, या स्थूल जल था?
ज्ञान का,
ज्ञान का सागर था, और उस ज्ञान के सागर में से आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माएं पार जावेंगी या देह अभिमानी पार जावेंगे? जो आत्मिक स्थिति वाले थे वो पार गए। पार गए कौन? जो पत्थर बुद्धि थे, उन पत्थर बुद्धियों को भी पानी में तैरने लायक बनाई दिया। दो बंदर दिखाते हैं कि उनके हाथ से वो पत्थर तैराए जाते थे और वो तैरने लगते थे। नहीं तो पत्थर डूबेगा या तैरेगा? पत्थर बुद्धि होंगे तो विकारों की दुनिया में डूब जाएंगे। पत्थर से अगर पारस बुद्धि बने हैं ज्ञान लेकर के, तो ज्ञान में तैरने वाले पार जावेंगे, डूबने की तो बात ही नहीं। और
शरीर छोड़ा है वो अस्थि बाद में किसी आत्मा के अंदर पार कर जाएंगी या एडवांस की आत्मा?
जो भी आत्माएं ब्रह्मा को फॉलो करने वाली है वो ब्रह्मा जैसी गति पावेंगी या कोई दूसरे प्रकार की गति पावेंगी?
ब्रह्मा जैसी।
दादी ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी या बाप के पार्ट को पहचानने वाली थी? ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी। तो जिसको फॉलो करेंगे वो याद आवेगा तो ब्रह्मा की गति को पावेंगे। ब्रह्मा जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, ऐसे दादू को भी अपने ग्रुप की जो भी आत्माएं हैं उनमें ही प्रवेश करके पार्ट बजाना है। और
बाबा ये अभी ऐसा पॉइंट है ना कि लक्ष्मी 2008 में आने वाली है वैष्णव शक्ति।
पॉइंट कोई ऐसा नहीं है मुरली में,
नहीं ऐसा बुलाए
बात, लेकिन लेकिन समझने की बात है।
लेकिन एक बात ये भी तो बाबा ने मिसाल दिया है ना, वो पपीते के पेड़ वाला तो 2 किलोमीटर के अंदर अगर पपीते का माधव रक्ष है तो वाइब्रेशन खींच लेगी, तो ऐसी ही कोई चेतन आत्मा है जो कि ना उस संगठन में आएगी, ना उसको देखेगी, ना मिली वगैरह गर्भ को धारण करेगी, तो ये कैसे साबित हुआ?
शरीर की स्थूल शक्ति ज्यादा काम करती है या मन के वाइब्रेशन ज्यादा काम कर सकते हैं? मन ज्यादा सूक्ष्म है या शरीर ज्यादा सूक्ष्म है? जो जितना ही सूक्ष्म होता है उसमें उतनी ही जास्ती ताकत होती है। जैसे एटम बम बनाए हैं, एटम कितना सूक्ष्म होता है और उससे सारी दुनिया का ध्वंस हो जाता है, ऐसे ही आत्मा अति सूक्ष्म है और देह स्थूल है। स्थूल देह में बंधी हुई दादी की आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा या मनमोहनी दादी की आत्मा इतना कार्य नहीं कर सकती थी। स्थूल शरीर के बंधन से छूटने के बाद जब सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया तो उसमें ताकत जास्ती हो जाती है, तो ऐसे यहाँ भी है।
लेकिन बाबा ये तो मुरैना के 2008 में वैष्णवी शक्ति आ रही थी, स्थूल में आ रही थी,
क्यों नहीं आ रही?
तो फिर वो पपीते के वृक्ष वाला हो?
अरे वो बात अलग, ये बात अलग कि 2008 में ही क्यों आवेगी, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं, वो हिसाब बता दिया। ब्रह्मा को 14-16 साल लगे प्रत्यक्ष होने में, ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14-16 साल तक लग गए, तब कहीं माउंट आबू में आकर के दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखा गया, तो प्रत्यक्ष हुआ कि यहाँ ब्रह्मा भी कोई है और ब्रह्मा कुमारियां भी कोई हैं। ऐसे ही दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में भी 7-8 साल लग गए, तब कहीं प्रत्यक्ष होता है कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। ऐसे ही तीसरी मूर्ति है, ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ जाती है और जितनी बढ़ती जाती है उतना टाइम कम लगता है तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में, और आधा समय। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल, तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 4 साल। एडवांस ज्ञान सुनाना शुरू कर दे।
नहीं, जो वैष्णवी माने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएगी बाप का, लेकिन एडवांस में आए बगैर
ज्ञान सुनाएगी नहीं, वो सुनने सुनाने वाली नहीं है और समझने समझाने वाली शक्ति नहीं है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली शक्ति है। तीन पार्टियां हैं एडवांस पार्टी में, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, ब्रह्मा सरस्वती विश्व किशोर भाऊ मनमोहनी दादी कुमारका दादी, जो अपने अपने ग्रुप में उमंग उत्साह बढ़ाने का पार्ट बजाती है प्रवेश करके, और दूसरी वो है जिनमें प्रवेश किया जाता है, वो है प्लानिंग पार्टी, जो ज्ञान के आधार पर प्लानिंग बना रही है नई दुनिया की, और तीसरी वो पार्टी है न प्लानिंग बनाने वालों में से है न उमंग उत्साह भरने वालों में से है, प्रैक्टिकल काम करने वालों में से। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो मकान का मालिक इंजीनियर को उमंग उत्साह देता है प्लानिंग बनाओ, मकान की नक्शा बनाओ, तो बनाता है।
ये भी झूठ है, ये भी झूठ है कि सीता जी अग्नि में समानी थी, ये भी
वो अग्नि स्थूल अग्नि नहीं थी, योग अग्नि थी। योग अग्नि में आत्मा पवित्र बनती है, जो पवित्र चीज होती है वो अग्नि में जलती नहीं है। किचड़ा जलता है या सच्चा सोना जलता है? किचड़ा जलता है, सच्चा सोना कभी जलता नहीं है। तो ऐसे ही जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं वो योग अग्नि में निखरती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं संसार के सामने। और
बाबा एक गाड़ी में बोला जैसे सर 76 में ड्रामा रिपीट हुआ था, मीन्स दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता के टाइम पे, मूर्ति की प्रत्यक्षता के टाइम पे भी ऐसी ड्रामा रिपीट होगा बाबा?
दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो कौन सी आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हुई? पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो कौन सी आत्माओं ने पहले पहचाना? पहली मूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा को चंद्रवंशी पहले पहचानेंगे या दूसरे वंश के पहले पहचानेंगे? घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले पहचान किनको होती है, बाहर वालों को या अंदर वालों को? परिवार वालों को, परिवार वालों को होती है। ऐसे ही त्रिनेत्री शंकर के रूप में जब शिव प्रत्यक्ष होते हैं तो उस त्रिनेत्री की पहचान तीसरा नेत्र धारण करने वाले ज्ञानवंशियों को, सूर्यवंशियों को पहले पहचान होती है या चंद्रवंशियों को होती है? सूर्यवंशियों को पहले पहचान होती है। ऐसे ही जो विष्णु का पार्ट प्रत्यक्ष होगा तो विष्णु देवता प्योरिटी में अव्वल नंबर में माना जाता है, वैष्णव संप्रदाय की पवित्रता बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जो पवित्र आत्माएं होंगी जन्म जन्मांतर की, जिन्होंने पवित्रता के नाम पर जौहर कर दिए, शरीर को भी आग में भस्म कर दिया ताकि विदेशियों और मुसलमानों के हाथ भी न लगने पाए, ऐसी पवित्रता को धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उनको पहचानने वाले भी कैसे होंगे? हैं, जो जन्म जन्मांतर के पवित्र होंगे, जन्म जन्मांतर की रानियों का पार्ट बजाने वाले होंगे, वो उनको पहले पहचानेंगे, दूसरे वंश वाले बाद में पहचानेंगे।
तो विष्णु के पार्ट को मतलब पहले पहले पहचानना क्या विजयमाला की मुखिया पहले से?
विजयमाला वाले ही ब्राह्मण के पहले पहचानेंगे, रुद्रमाला को रुद्रमाला वाले पहले पहचानेंगे, भक्तमाला को भक्ति माला वाले पहले पहचानेंगे।
बाबा जैसे इंदिरा कांड हुआ था जिस समय, तो दिल्ली में सब लोगों को मार डाला गया, गले में टायर डाल के, तो उस समय हमारे घर की दुकानें भी लूट रही थी, तो हमने कहा यदि हम लोगों को इन्होंने कुछ किया तो पहले तो हम इनको मारेंगे, पहले छेड़ेंगे नहीं, अगर तो इन्होंने हमको कुछ किया तो हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं, सामना करेंगे, और यदि हमारे पे जान पे आई तो हम अपने आप मर जाएंगे, ऐसा हमने संकल्प किया था। और अकेले मैं पूरे घर में दौड़ रही थी कि तुम लोग शांत हो जाओ, खाना वाना बना के दिया, सबको खिलाया, और हमारी मौसी के साथ दो लड़के खत्म हो गए थे, उनकी एक बहू, ऐसे तीन बच्चे उनके खत्म हो गए थे। उस समय हमारे मन में यही आया कि भगवान को याद करो और उसकी याद में बनाओ और खिलाओ। तो ये कैसा मतलब ये पहले का ही मतलब आत्मा ने जो रील भरी हुई है पांड भराव के अनुसार, सभी बोलते थे कि घर में ये नहीं होती तो घर में लोग कितने, घर के लोग वैसे ही खत्म हो जाते।
जहाँ बुद्धि में भगवान का आसरा होता है तो दूसरों को मारने की बात आ सकती है?
नहीं, ये कहा था कि अगर मतलब कुछ इन्होंने किया,
अगर हो या मगर हो, भगवान जब हमारा रक्षक है तो दूसरे को मारने की बात बुद्धि में आ ही नहीं सकती। और
बाबा जैसे आत्मा इतने अपना पाप है, जैसे अब रानियों ने जोहर करा तो उन्हें पाप नहीं लगा,
लक्ष्य देखा जाता है, कोई काम किया जाता है उसकी भावना देखी जाती है, भावना क्या है, लक्ष्य क्या है, जौहर किया वो आत्मा को दुख देने के लिए किया या भारतवर्ष की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया? भारत की पवित्रता की पावर अक्षुण्ण बनी रहे, भारतीय राजाओं की जो प्योरिटी से यूनिटी बनने वाला वातावरण है वो बना रहे, इसलिए किया, अपने को दुख देने के लिए थोड़े किया, उन्हें तो अब खुशी थी इस बात की कि पवित्रता के लिए हमारी जान भी चली जाए। जैसे लड़ाई लड़ने वाले होते हैं, युद्ध के मैदान में उमंग उत्साह में देश की रक्षा करते हैं या ऐसे ही कर लेते हैं, उमंग उत्साह रहता है तो अंत मते सुगति हो जाती है। पति की याद में शरीर छोड़ती है तो फिर उसी पति के साथ मिलती है,
बाबा यही भाव था उस समय।
तो जन्म जन्मांतर की पवित्रता जिनके अंदर होगी उनके ही श्रेष्ठ विचार होंगे।
इससे आत्मा त्याग पाप नहीं लगता बाबा? नहीं, जैसे आवे हो जाए कोई
कोई होते हैं जो हंसते हंसते शरीर छोड़ते हैं, उनके चेहरे पे शिकन भी नहीं आती है, तो उनको दुखी जन्म मिलेगा, या जो दुखमयी स्टेज में शरीर छोड़ते हैं उनको दुखमयी जन्म मिलेगा, ये स्टेज की बात है।
हाँ। पहले बाबा बोलते थे कि 16,000 की माला में आने से बड़ी आप त्रिजा में अपनी इज्जत पाना
है,
पहले बाबा बोलते थे।
अभी भी तो बोले कि 16,000 की माला में दास दासी बनने से तो अच्छा ये है कि प्रजा में जाकर के साहूकार बने।
आज की मूल्य में 108 का बोला, कहीं रिफाइन चेंजिंग तो नहीं हुआ?
कौन सा चेंज हुआ?
अभी 108 का बोला बाबा ने पढ़ा है।
क्या 108 बोला?
आज बोला 108 की माला में आने से बढ़िया।
108 नहीं, 16,108।
आप
करेक्शन नहीं है, 16,108 की माला में आने, 108 तो राजाएं हैं, उसमें आना तो अच्छी बात है। 108 की माला वो तो शिव की माला है।
मुझे समझ में आ रही
है।
खान पान हाँ
परमात्मा इसी में से उतर जाती है ना जो आत्मा है
हाँ।
तो आठ के छोड़ के तो है क्या उतर जाती है मेरी
भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर चाप जहाज स्टीमर माने जहाज सिख लोग कहते हैं नानक चाप जहाज चाप कहते हैं शरीर को जिस शरीर रूपी चाप का या जहाज का आधार लिया आधार लेने के बाद और फिर जो उतर जाए तो डूबेगा या जिंदा रहेगा डूबेगा तो ये यहाँ की बात है आठ क्यों निकलते हैं जो बचते हैं वो इस सृष्टि पर कितने बचेंगे
16.5 लाख
बचेंगे और डूब नहीं मरेंगे सब हाँ।
थोड़े बहुत देर के लिए छोड़ लेते
हैं
ना थोड़ा छोड़ लेते हैं ना
हाँ थोड़ा थोड़ा जितना नंबर वार तो सभी हैं आठ में भी नंबर वार होते हैं
विष्णु कोई मूर्ति नहीं है चार आत्मा का काम भी देखा
विष्णु माने क्या बताया हाँ चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल तो स्वभाव संस्कार के मेल करने में कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है ऐसी कौन सी शक्ति है जो स्वभाव संस्कार को मिलाने में सबसे जास्ती काम करती है हैं? नहीं हम शक्ति की बात पूछ रहे हैं आठ शक्तियां दिखाई हैं। तो आठ शक्तियों में कौन सी ऐसी शक्ति है जो संस्कारों को मिलाने में सबसे ज्यादा आगे है सहन शक्ति और वो सहन शक्ति तीनों मूर्तियों में से किस मूर्ति में ज्यादा मानी जाती है नहीं तीनों मूर्तियों में सबसे जास्ती सहन शक्ति उसका नाम नहीं है कि कोई ने ठोकर मारने वाली बात कह दी और हार्ट फेल हो गया उसे सहन शक्ति कहेंगे सहन शक्ति उसको कहेंगे कोई ने कुछ भी किया और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और बाप की बातों पे विश्वास किया तो जो चार आत्माएं हैं चार भुजाओं के रूप में दिखाई गई हैं ब्रह्मा के साथ सरस्वती शंकर के साथ पार्वती वो जो चार आत्माओं में कौन सी ऐसी आत्मा है जो सबसे जास्ती सहन शक्ति धारण करती है बेसिक में भी सहन शक्ति धारण करती है और एडवांस में आने के बाद एडवांस में भी सबसे जास्ती सहन शक्ति धारण करती है नहीं ब्रह्मा बाबा तो बेसिक में ही शरीर छोड़ गए कृष्ण की आत्मा के लिए तो शास्त्रों में भी दिखाया जाता है कि बहेलिए ने पांव में तीर मारा और मर गए
जगदम्मा
हाँ जी जो पार्वती वाली आत्मा है वो पार लगाने वाली बनती ही तब है जब उसमें इतनी प्योरिटी की पावर है कि यूनिटी बनाई लेती है सहन शक्ति के बाद सहन शक्ति सब गुणों का राजा माना जाता है तो जो चार आत्माएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार का मेल दिखाया जाता है उनमें कोई आत्मा तो ऐसी होगी सबसे जास्ती सहन शक्ति धारण करने वाली हो
जगदम्बा
जगदम्बा अगर सहन शक्ति धारण करने वाली हो फिर महाकाली का पार्ट क्यों बजाएगी और
ब्रह्मा का पार्ट चला
है 33 साल हाँ जी
33 साल शंकर की परिचार्थी का पाठ
ठीक है
मूर्ति आने वाली
है,
उसका पाठ शुरू होना है।
अच्छा, ब्रह्मा का पाठ चल रहा है कि नहीं अभी है?
ब्रह्मा का पाठ देखा जाए तो एक मूर्ति ने पूरी कर चुकी
है।
एक मूर्ति तो पहले कर चुकी है ब्रह्मा का पाठ। बाबा कहता
है, अरे ब्रह्मा का पाठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
चल रहा है।
उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। उसके ब्राट के हिसाब से देखा जाए तो 30-35 साल में ब्रह्मा का पाठ खुले हुआ। 30-35 साल दूसरी मूर्ति का, वो 30-35 साल तीसरी मूर्ति का लग जाएंगे। लेकिन अभी जैसे शास्त्रों को अपन डेली करें तो भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा जो शंकर की जटाओं में समा गई, और जबकि शंकर की पर्सनालिटी का पार्ट पूरा हो गया और गंगा अभी तक निकली नहीं, तो इसका बेहद में कैसे टैली करेंगे?
गंगा के लिए मुरली में तो बोला है गंगयान गंगाएं निकली, अंत में तो बीच में कैसे निकल पड़ेंगे?
तो अंत में तो शंकर की पर्सनालिटी का 2006 तक फाइनल पार्ट था, वो पूरा हो चुका है। तो फिर किस पर्सनालिटी के लिए अपन इसको लागू करेंगे?
विष्णु की पर्सनालिटी के लिए। विष्णु में तो राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और उनकी सहयोगी शक्तियों, चारों आत्माएं मौजूद है।
बाबा ये दो मूर्ति फ्रंट में तो होना चाहिए, एक तो क्या बोलते हैं तपस्या करने वाली मूर्ति भागीरथ और एक शंकर, दो पर्सनालिटी होना चाहिए ना ब्राह्मणों के बीच में। भागीरथ ने तो तपस्या करी, गंगा ही शंकर की जटाओं में समा गई।
भागीरथ किसे कहा जाए? भाग्यशाली रथ किसको कहा जाए?
राम की आत्मा।
तो सुप्रीम सोल किस में प्रवेश करता है आदि से लेकर अंत तक?
है तो प्रजापिता की पर्सनालिटी तो ब्राह्मणों के बीच में होना चाहिए।
प्रजापिता की पर्सनालिटी ब्राह्मणों के बीच में होनी चाहिए। प्रजापिता के बच्चे होंगे तो उनको दिखाई पड़ेगी, बच्चे नहीं होंगे तो दिखाई कहाँ से पड़ेगी?
शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कह सकते
हैं?
शिव बाबा को तो प्रजापिता नहीं कहा जा सकता।
शंकर को प्रजापिता नहीं कहा जाता?
शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहा जा सकता।
हाँ, और शिव को भी प्रजापिता नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रजापिता होता है पतित प्रजा का पिता। प्रजा पतित है तो पिता भी पतित है। जब सारी प्रजा पावन बनती है तो अंत में पिता भी पावन बनता है, उसको कोई मरते हुए देखेगा ही नहीं। वो सब बच्चों का उद्धार करने के बाद फिर अंत में वापस आवेगा, तब तक सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में रुकी रहेंगी।
बाबा ने मुरली में कहा मनुष्य आत्मा का पिता प्रजापिता है, सिर्फ बाबा तो आत्मा का पिता है। ये तो दो पर्सनालिटी अलग अलग हो जाती।
पर्सनालिटी कहाँ हो गई? तुम पर्सनालिटी नहीं जानते हो। पर्सन कहते हैं व्यक्ति को।
तो बाबा ने मुरली में
पर्सन कहते हैं व्यक्ति को, जो व्यक्त हो उसको कहते हैं पर्सन, और जो अव्यक्त हो आंखों से दिखाई न पड़े उसको पर्सन नहीं कहेंगे। शिव पर्सनालिटी नहीं है, वो कोई पर्सन नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा दिखाई पड़ती है क्या?
नहीं,
वो तो अव्यक्त चीज है। लेकिन जब साकार में प्रवेश करता है तो पर्सनालिटी बन जाती है। वो शिव की भी पर्सनालिटी है, राम वाली आत्मा की भी पर्सनालिटी है, और चंद्रमा के रूप में प्रवेश करने वाले कृष्ण की भी वो ही पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी एक और आत्माएं
अनेक,
आत्माएं तीन।
बाबा भी बाबा ने बोला है कि बिंदी अलग है और साकार और निराकार का मेल अलग है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो साकार है वो साकार राम की आत्मा को साकार समझ लिया, वो तो नहीं है। साकार माने जिस तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, और जिसने प्रवेश किया हम उसको देखते हैं, हम राम की आत्मा को नहीं देखते। हम किसको देखते हैं? हम राम को बाबा समझते हैं या शिव को बाबा समझते हैं? हम शिव को बाबा समझते हैं। ये भूल ब्रह्मा कुमारियों में भी हुई, इसलिए भक्ति मार्ग कहते हैं राम के बंदे और कृष्ण के बंदे, ये दोनों आंखों के अंधे। अरे राम की और कृष्ण की आत्माओं को तो हम भूल ही जाएं, हमको एक को याद करना है या तीन को याद करना है? एक को, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे नहीं एक राम बाबा, एक कृष्ण बाबा, दूसरा न कोई है, तो दोनों बुद्धि भ्रष्ट करने वाले रहे।
बाबा अभी गावन बोला,
मैं पूछना चाह रहा था बाबा, ये लुका छुपी का खेल कब तक चलता रहेगा?
काहे का लुका छुपी? तुम्हारे लिए लुका छुपी का खेल होगा, अभी अभी 2000 में अव्यक्त वाणी बोल दिया दुनिया वालों के लिए, बाप गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, तो किन के लिए लुका छुपी है?
दुनिया वालों
की लिस्ट में हो तुम।
हम तो सन्मुख बाप के
हैं। बाबा ने कहा नहीं जैसे त्रिमूर्ति को चित्र रखना रांग है,
त्रिमूर्ति का चित्र रखना रांग इसलिए है कि तीन चित्रों को याद करोगे तो उन तीन चित्रों की जो पर्सनालिटी है और जो उनका व्यवहार है, जो उनके अंदर खासियत है, वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी।
तो अभी तो बाबा ये बोलते थे त्रिमूर्ति के चित्र के आगे बैठो और विचार सागर,
वो विचार सागर मंथन करने के लिए, याद करने के लिए नहीं।
अब तो मना ही कर दिया।
विचार सागर मंथन अलग बात है और याद करना अलग बात है। याद करने के हिसाब से तो ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया?
वो इसलिए शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने।
शरीर नहीं छोड़ दिया तब नहीं कहते थे? तब भी तो कहते थे कि इस ब्रह्मा के चित्र को नहीं रखना है, क्योंकि जानते थे।
हेलो फादर, मुझे स्पष्ट कीजिए।
हैं?
हेलो फादर।
हाँ।
जैसे फादर का मतलब ये होता है ब्रह्मा को पाने के लिए।
फादर का दो रूप में पार्ट है, फादर हमारा शिव है या फादर हमारा राम है?
फादर हमारा शिव
नहीं, हमारा पहले तो पक्का ये करो फादर कौन है? फादर राम है या कृष्ण है या शिव है? हमारी बुद्धि में कौन सा फादर बैठा हुआ है? एक आदमी जिसका प्रश्न है उसको समाधान होने दो। हाँ, आत्माओं का फादर हमारी बुद्धि में है, वो ही ऊंचे से ऊंचे है। तो जो आत्माओं का फादर है वो दो रूप में पार्ट बजाता है, एक तो माँ के रूप में, उसको कहते हैं त्वमेव माता। ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल ने 63 जन्म में वो माता का पार्ट नहीं बजाया, इतना सहन शक्ति का पार्ट 63 जन्म में नहीं बजाया। उस समय वो माँ नहीं था। माँ कब बना? जब शिव ने प्रवेश किया। तो वो माँ है, फॉलो मदर बाद में, पहले क्या? फॉलो फादर। तो माँ की बात अलग, और वो ही माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जब डायरेक्ट फादर के रूप में पार्ट बजाती है तो फादर कहा जाता है। उसमें भी दो बातें हैं, साकार रूप में जो पार्ट बजाया उसको फॉलो करना है कर्म इंद्रियों के रूप में, और निराकार रूप में जो पार्ट बज रहा है या आकारी शंकर के रूप में जो पार्ट बज रहा है उसको फॉलो करने की बात नहीं है, उसको डायरेक्शन को मानने की बात है। एक होता है डायरेक्शन से फॉलो करना और एक होता है कर्मों में फॉलो करना। तो ब्रह्मा के रूप में जो बाप ने पार्ट बजाया उसको कर्मों में फॉलो करना है, और जो सदगुरु के रूप में पार्ट चलता है उसके आर्डर को फॉलो करना है, कर्मों को फॉलो नहीं करना। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु के जो कर्म होते हैं उन कर्मों को फॉलो नहीं करना है, वो कर्म नहीं करना है जो गुरु कर्म करता है। क्या करना है? जो गुरु कहे वो करना है।
बाबा शंकर को बोला है कि शंकर तो अमरनाथ है, फिर ऐसा क्यों बोला बाबा कि उसको कोई मरते भी नहीं देख सकता
है? अमरनाथ है तो अमरनाथ का मतलब क्या हुआ? आ आ माने नहीं, मर माने मर, जो न मरे सो अमर।
तो फिर ऐसा क्यों बोला?
तो उसको कोई मरते हुए देखता ही नहीं तो कैसे कहेंगे
तो हमारे
कि अमरनाथ है?
तो इसको मरने की
तो अमरनाथ है,
वो तो अमरनाथ ही है,
अमरनाथ है वो।
उसको कोई मरते हुए देखा ही नहीं तो मर कहेंगे या अमर कहेंगे?
अमरनाथ,
अमर कहेंगे।
ऐसा पॉइंट क्यों बोला कि मर?
इसीलिए बोला है कि संगम युग में कोई एक ही आत्मा ऐसा पार्ट बजाती है जो अनिश्चय बुद्धि हो के मरती नहीं है, बाप के ऊपर आदि से लेकर के अंत तक उसको निश्चय अटल रहता है, इसलिए अमरनाथ है। और बाकी सबको आज निश्चय है, आज लिखेंगे हमारा बाप है, और कल
अनिश्चय हो जाते,
कल अनिश्चय हो जाता है।
ब्रह्म
बाबा ने
मुरली में बाप हो तो बाबा मुरली में बोला कि भले ये कमरा हो भाई, मैं किचन हो भाई, मैं खाना बनाओ भाई, मैं सब क्लास लगाओ, تو کر سکتے ہیں
بابا نے بول دی تو
نہیں تو پوچھ رہا ہے بابا سے
پوچھنے کی کیا بات
نہیں تو کھول لیں تو
اس میں پوچھنے کی بات نہیں ہے
چھوٹا کمرہ ہے کھول لیں
یہ بھگوان
اس میں پوچھنے کی بات نہیں ہے اس میں یہ لائقات کی بات ہے کہ گیتا پاٹھشالا کھولنے کے بعد اگر سمجھنے والے کوئی جگیاسو آ جاتے ہیں تو ہم ان کے پرشنوں کا سمادھان کر سکتے ہیں
آپ ہی کرو گے سمادھان
تو آپ ہی گیتا پاٹھشالا کھولو گے
آپ چلاؤ گے
جو بیسک والے ہیں نا وہ یعنی کہ ایڈوانس گیان لینے کے بعد اور بھی پاور فل ہو جائیں گے اور 2036 تک ہی یعنی دونوں ملیں گے 2036 تک ہی دونوں ملیں گے بی کے اور ایڈوانس
بی کے مانا بھکتی
نہیں جو مانتا ہوں
بی کے مانے بھگت بھگت مانے جو سنتے ہیں اور سناتے ہیں کیا مرلی سنیں گے اور دوسروں کو سنائیں گے اور سمجھیں گے اور سمجھائیں گے نہیں مرلی کے جو بھی مہاواکیہ سنیں گے اور سن کر کے وہی مہاواکیہ دوسروں کو سنائیں گے لیکن ان کا ارتھ نہیں جانتے تو وہ ہے بھگت جیسے بھکتی مارگ میں شاستروں میں شاستر پڑھتے ہیں رامائن پڑھیں گے صبح سے لے کے شام تک گیتا پڑھیں گے لیکن پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اس کا ارتھ نہیں سمجھتے اگڑم بگڑم ارتھ بھگوان سروویاپی ہے ارتھ یہ نکال دیا تو یہ بھکتی ہوئی یہ گیان ہوا
بھکتی
یہ تو بھکتی ہو گئی
بابا جی سے ابھی یہ رکشا بندھن میں کتنی سارے بجریاں بولتے یہ کیا ہے
سب بھکتی ہے
بھکتی کے لیے پھر وہ گھر گھر پھرتے ہیں آنے سے مہربانی کرو
مہربانی
اور بس وہی کرم کریں گے اسی دن بس ملیں گے بعد میں پھر وہی کریں گے
تو اپن 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 بھائی آپ کر رہے اپن تو نہیں کر
رہے
جو بھکتی میں جو بھی کرم ہوتے ہیں وہ بھکتی کے کرموں کا کارن کیا ہے اگر کارن نہیں جانتے تو کرنا بیکار ہے گیان میں ہم جو کرم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ کرم کیوں کرتے ہیں جان کے پہچان کے تب کرم کرتے ہیں
ان سے پوچھتے یہ کیوں کرتے بولتے پرمپرا چلی آ رہی
لیکن بابا جی تو یہ آیا ہے نا کہ وہ جب تک 2036 تک اگر ملیں گے نہیں سوریہ چندر ونشی تو مل جائیں گے جو دوسرے دھرم والے ہیں وہ نہیں ملیں گے تو پھر وہاں تپسیا بھومی میں کیسے جائیں گے
سوریہ ونشی چندر ونشی پہلے رودرمالا میں ملیں گے یا پہلے آدھار مورتوں میں ملیں گے بیسک میں ملیں گے پہلے رودرمالا میں ملتے ہیں ملیں گے تب جب پہلے سوریہ ونشی پرتیکش ہو اور سوریہ ونشیوں کے بعد پھر چندر ونشی پرتیکش ہو جب تک پرتیکشتا روپی جنم ہی نہیں لیا ہے تو ملنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے
پر وہ مانتا ہوں خالی نہیں کریں گے تب کیا
خالی بابا جانا باپ جانا چنتا ہوئی جمین لیا کا ڈال دو مکان بنا لے
وہ تو بھکتی مارگ میں جیسے آج کی سرکار میں پارٹیاں بولتی ہیں پارٹی والے لوگ بولتے ہیں گدی خالی کرو کہ جنتا آتی ہے ایسے یہاں گیت گانا شروع کر دیا گدی خالی کرو ارے اپنی لائن بڑی بناؤ ان کی لائن خود ہی چھوٹی ہو جائے گی جب ریزلٹ نکلتا ہے اور مالا کے مڑکے پیروئے جانا شروع ہوتے ہیں پہلا مڑکا جب پیرویا جاتا ہے مالا میں تو جگن ناتھ کا کوئی سہیوگی بچتا ہے
نہیں کوئی نہیں
کوئی نہیں سہیوگی بچتا ہاں تو پہلا مڑکا تیار ہو گیا
جو آپ کا پرتیکش ہوگی اس کو ایک ٹائم اکیلا
अकेले की बात यह है, नष्ट हुआ स्मृति लब्धा, देह और देह के संबंधों से मोह नष्ट हो जाए, ये हमारे कोई अपने नहीं है। एक परमपिता परमात्मा के अलावा सब पराए हैं, ये बात बुद्धि में पक्की बैठती नहीं है, सब धोखेबाज हैं। बाप बाप नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी अभी भी नहीं है,
अभी धोखा देते बाबा, अब धोखा देने वाले।
राम नाम सब पता होंगे
बाबा, पति है,
राम नाम सब
है,
पति है अभी,
पति है
अभी भी नहीं है, मतलब आपने बोला अभी।
ज्ञान में जो चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं उस समय तो ये पक्का हो जाने जब चाहिए कि हम आत्मा आत्मा
भाई भाई
भाई भाई है, पत्नी यत्नी का सवाल ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है।
क्लास होती है अगर बच्चे का अगर है को सामान है, शादी कर दी बच्चे की, अगर अगर आत्मा आती है तो करें कि नहीं?
पर्दा डाल लो,
हाँ
बच्चों की शादी कर दी, गीता पाठशाला खत्म,
अलग
है,
अलग है,
अलग माना
गीता है, उसे
गीता
एक है
छुपा के रखे हुए
है।
हाँ,
और अगल क्लास हो रही
है, शिव बाबा का मंदिर है वो शिवालय कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है देवालय कहा जाता है, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई वैश्या बैठ जाए और अपना धंधा शुरू कर दे तो लोग मानेंगे मंदिर को?
क्लास बंद कर देना,
बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या तो बच्चों से जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा गेट आउट, ऐसे बच्चों को अलग कर दो, उसी में मंदिर बनाओ लक्ष्मी नारायण का, दूसरों को लक्ष्य दो, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, और उसी में गंध चलता रहे तो फिर मंदिर बनेगा
वो तो अलग है
ना? क्या अलग
है?
पाठशाला
गल, दीवान पड़ी हुई है,
हाँ। नहीं ऐसा है बाबा, जैसे वो कमरा है और झाई मतलब गीता पाठशाला के कमरा में करके,
तो बीच में आने जाने का रास्ता है ना, हाँ। फिर
तो खत्म हो गई,
अब कहीं रखो जो तो तुम्हारी रखने की बात है। सीधी सी बात, ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को अलग कर दिया, तुम्हें गंध खाना है तो बाहर की दुनिया में जाओ, हमारे से कोई कनेक्शन नहीं, तो हमारे बच्चे नहीं, हम तुम्हारे बाप नहीं है। भारत में,
भारत में वर्ल्ड का गीता है,
हाँ।
इसका भी क्या कुछ चैतन्य भारत के साथ कोई कनेक्शन है वर्तमान के?
आज जो कपगप थी देखते रहते हैं टीवी में, वो ही पूछेंगे।
बाबा कहते हैं ना सारी घटनाओं का कुछ न कुछ देह से संबंध है,
हाँ।
तो क्या इसका भी कुछ संबंध है?
मन दुनिया में जो बातें हो रही हैं उन्हीं में बुद्धि रमी रहे, शिव बाबा को अलग से याद करने की दरकार नहीं,
बाबा तो याद रहता ही है, बाबा इसका कुछ संबंध
रहा याद ऐसे।
2004 में बोला, मतलब बाड़ी में बोला कि 2004 में
शंकर
का पार्ट क्लियर हो गया, मतलब खत्म
हो
गया, तो फिर
क्लियर हो गया माने खत्म हो गया,
तो कैसे बाबा दूसरी मूर्ति का पार्ट खत्म हो गया ऐसा बोला बाड़ी में?
ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो गया
नहीं,
जब ब्रह्मा का ही पार्ट नहीं खत्म हो गया, अव्यक्तवाणी में बोला ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है, जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है ब्रह्मा का पार्ट खलास नहीं हो सकता, तो ब्रह्मा पहली मूर्ति का ही पार्ट खत्म नहीं हुआ तो शंकर कैसे खत्म हो जाए?
तो फिर ऐसा बाणी में क्यों बोला
है?
बाणी में ऐसा क्यों बोला कि 2004 में?
बाणी में तो आज भी बोल दिया तुम शंकर को खत्म नहीं करो, शंकर को तुम खत्म करोगे तो शंकर तुमको खत्म कर देगा।
बाबा इसका बेहद का अर्थ क्या है?
बेहद का अर्थ ये है कि शंकर का पार्ट कुछ समय का है वाणी, और वाणी के आधार पर वाइब्रेशन बनाने का, जब वाइब्रेशन तैयार हो जाता है, वाइब्रेशन की पावर तैयार हो जाएगी तो बोल बोल का पार्ट खत्म हो जाता है। बाकी ऐसे नहीं शंकर खत्म हो जाता है या ब्रह्मा खत्म हो जाता है। हाँ, पार्ट जो है वो अलग अलग टाइम पर उदय हुए हैं।
जब
ब्रह्मा का पार्ट है तो विष्णु और शंकर का पार्ट नहीं, जब शंकर का पार्ट है तो प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मा और विष्णु नहीं, और जब विष्णु का पार्ट है तो चारों आत्मा ही।
वाणी कभी भी चल रही है।
क्यों? गीता पाठशाला खत्म हुई? खत्म हुई, दूसरी गीता पाठशाला बन जाती? कहाँ बना? जिनके अंदर वो ज्ञान में चलने की पावर और मुकाबला करने की पावर होगी वो चलाएंगे। बता तो दिया, अगर तुम्हारी रचना तुम्हारी कंट्रोल में नहीं हो तो उसको अलग करो।
अलग करें
और क्या, नहीं तो दूसरों को गीता पाठशाला खोल ले दो,
दूसरी जगह।
और दूसरे गीता पाठशाला खोल के बैठे हैं। अच्छा, जो नियत नियमों में चल पाए
दूसरे खोल ले।
और क्या, दूसरे लोग खोलेंगे।
खोले फोन की कह रहा हूँ खोलो,
आपके कहने की बात थोड़ी ही है, जिनको खोलना होगा वो अपने आप ही खोल लेंगे। और
संत 36 में तो सारी पूरे हो जाएंगे बाबा, संत 36 में आए थे और अब 36 में पूरे हो जाएंगे। सौ साल
इन शक्ति में क्या पूरा हो जाएगा?
सौ साल पूरे हो जाएंगे बाबा को आए थे।
हाँ,
शिव बाबा को स्थापना तो हो चुकेगी ना संत 36।
हाँ
नहीं दिन आएगी।
हाँ हाँ, फिर
ये बहन बोली ना कि संत 36 में मिलेंगे आप वाले, तो पहले ही मिलना चाहिए तब तो स्थापना होगी, दोनों विजयमाला और रुद्रमाला का मिलन होगा।
अरे 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले और 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले, तो जन्म देने वाले पहले पावरफुल बनेंगे या जन्म लेने वाले पावरफुल बनेंगे?
देने वाले बनेंगे।
जन्म देने वाले पावरफुल बन जाएंगे तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा जन्म लेने वालों को। जन्म लेने वालों को जब शरीर ही छूट गया तो उनको कौन पूछेगा दुनिया में?
हाँ, 4.5 लाख तो मतलब जब हो जाएंगे जन्म हो जाएगा।
जन्म होने से वो इकट्ठे हो जाते हैं क्या? जन्म होगा तो 4.5 लाख के बीच में परिवार में होगा या छोटा सा परिवार होगा?
छोटा मतलब इकट्ठा रह रहा था, जैसे अभी चल रही दीदी तो 5 साल अलग अलग जैसी
रहेंगे। गीता पाठशालाओं में भी धारणा अलग अलग तरीके की है, सबकी एक जैसी धारणा थोड़ी ही है।
बाबा 4.5 लाख अगर नंबर
बार जाएंगे सब इकट्ठे ही जाएंगे, लेकिन फिर भी लाइन होगी, जैसे बारातियों की लाइन होती है तो ये भी लाइन होगी। इकट्ठे का मतलब ये नहीं कि एक सेकंड में सब इकट्ठे हो जाएंगे, नंबर बार जाएंगे और नंबर बार इस सच्ची पर आएंगे।
बाबा ने मुझे बोला है कि एक ट्रेन चलेगी उस समय,
तो कराची में जब खून की नदियां बही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो जिनको जाना था वो एक ही ट्रेन में चले गए या दो चार ट्रेनें मिलती रही लगातार?
एक ही में,
जैसे पहले हुआ आदि में हुआ वैसे अंत में होगा।
बाबा करण कराम आप ही हो, अब हम तो कुछ
कह
ही नहीं सही का छुरी
तुम
अकड़ता
हो। भगवान जो करण करावनहार कहा जाता है वो कोई जादूगरी करता है क्या?
नहीं,
अंधश्रद्धा फैलाने वाली जादूगरी तो नहीं करता है।
हम तो कुछ कर नहीं सकते हम तो कुछ करेंगे।
और याद तो कर सकते हो, तो शंकर याद कर, याद के बल से विश्व की बात सही ले लेता है, तो आप भी ले लो
बाबा।
हाँ,
जिन्होंने सबसे बड़ा गृह बृहस्पति
है जी,
बाबा ने मुझे
कमाने कर
हाँ ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है,
और बृहस्पति की दशा अच्छी मानी जाती है।
बृहस्पति की
दशा अच्छी मानी जाती है।
हाँ जी,
जब बृहस्पति की दशा अच्छी है तो फिर ग्रह तो रतन में है,
है?
ग्रह वो रतन की साइड संज्ञा दे मिलेगी इनको, तो अष्टदेवों में है या बृहस्पति या नहीं है?
जब है ही बृहस्पति माना वृक्षपति, और वृक्षपति तो बीज ही होता है, जो सारी सृष्टि का बीज होगा, सारी सृष्टि का बाप होगा, तो मुखिया ही होगा ना।
नहीं बाबा, मुखिया तो है लेकिन फिर ग्रह तो रतन में उसमें वो मिल रहा है, जितने भी ग्रह है वो रतन की श्रेणी में आ रहा है, रतन का टाइटल मिलना उन ग्रहों को, तो फिर ये क्या है?
क्या है
भाई, इनको रतन का टाइटल दिया जा रहा है, जैसे कि सूर्यवंशी जो है क्या बोलते हैं अष्टदेव, सूर्यवंशी की अष्टदेव,
अष्टदेव अलग है और रतन अलग है, जो अष्टदेव है वो सब सूर्यवंशी है, जो सूर्यवंशी होते हैं वो सब हीरो पार्टधारी है।
जिसमें बृहस्पति की पर्सनालिटी भी सूर्यवंशी है क्या?
वो सारे ही सूर्यवंशी हैं, आठों देवता, देवता का ही उनको जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, जिनके पूरी 16 कला संपूर्ण होती है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो है वो सूर्यवंशी नहीं है।
जो बृहस्पति की पर्सनालिटी अष्टदेवों में है या अष्टरत्नों में, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ।
आठों देवों की पर्सनालिटी अकेले बृहस्पति को छोड़ो, आठों देवताओं की पर्सनालिटी अष्टदेव में है।
तो बृहस्पति तो रतन की संख्या मिलेगी, रतन का
बृहस्पति भी रतन है और जो आठवां देवता है वो भी
सब रतन है क्या?
वो भी हीरा रतन है, वो सब हीरे ही हीरे हैं, कमजोर रतन नहीं है।
तो आगे चल के अष्टदेव या अष्टरत्न
होना है? नहीं, अष्टदेव होते हैं सूर्यवंश से, और दूसरे दूसरे वंशों के जो 12 के ग्रुप हैं उनके मुखिया हैं रतन, जिनकी जिनकी वैल्यू कम होती जाएगी।
अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश करेंगे,
जो ताकतवर होगा वो तो प्रवेश करेगा ही।
तो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी के अष्टदेव और अष्टरत्न कौन
है?
सूर्यवंशी चंद्रवंशी में अष्टदेव अष्टरत्न होने चाहिए दोनों में।
तो हरेक धर्म की अपनी अपनी माला होती है, इसमें नई बात क्या है? ऐसा कोई धर्म है जो माला न घुमाता हो? हर धर्म में माला की मान्यता है।
नहीं, जैसे कि बाबा बृहस्पति देव को सबसे उसका हेड वक्त बता रहे हैं, सबका मुखिया बता रहे हैं, तो बृहस्पति तो वो है ग्रह है, और ग्रह रतन रतन है,
ग्रह रतन है,
ग्रह को रतन का टाइटल मिला है।
रतन जो होते हैं नंबरवार कम वैल्यू वाले होते हैं, 9 रतन, उनमें एक रतन वैल्यूलेस भी होता है, लेकिन जो हीरे होते हैं वो सब मोस्ट वैल्यूबल होते हैं, उन हीरो में गिनती है अष्टदेवों की, वो सबके पूर्वज हैं।
पापा रतन तो धर्म साफ होते हैं ना?
तो एक ग्रह बृहस्पति भी है उसमें
है?
एक ग्रह बृहस्पति भी है सबसे बड़ा
है?
तो ये रत्नों का हेड है या देवों का हेड है बृहस्पति?
जो हीरे हीरे हैं उन हीरो का हेड नहीं है। अरे कोई माणिक है, कोई पन्ना है, कोई मूंगा है, तो अपने अपने ग्रुप के हेड है रतन, और बृहस्पति भी है, वो सूर्यवंशी का हेड है,
वो भी रतन है ना बृहस्पति।
जब रतन के रूप में पार्ट बजाता है तो रतन है, हीरा है, हीरो पार्टधारी है,
तो उसको दोनों में टाइटल मिल जाएगा, देवों में भी और रतन में भी।
दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। बीज में क्या नहीं समाया हुआ है? झाड़ का 500 करोड़वां पत्ता और उसका स्वभाव संस्कार बीज में समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? समाया हुआ है। और
बाबा राम भी रावण बनता है, तो कैसे बाबा?
सबसे जास्ती पतित कौन बनता है और सबसे जास्ती पावन कौन बनता है?
रावण
और सबसे ज्यादा पतित कौन बनता है?
रावण
सबसे पतित
है। जो राम जब सबसे ज्यादा पतित बनता है तो रावण भी बनता होगा।
संगम की याद
कृष्ण कंस बनता है और राम रावण बनता है। सतु प्रधान होता है तो राम और कृष्ण बनता है और तमो प्रधान बनता है तो रावण और कंस बनता है।
बाबा ये संगम युग की यादगार है।
संगम युग में ही जब तामसी शूटिंग होती है तब राम रावण बनता है कृष्ण कंस बनता है।
जैसे सत्यु तेरी दुनिया है तो बाबा सॉरी अगर तेरी दुनिया है तो नर की भी तेरी दुनिया है तो कैसे बोला बाबा
जो सुख की दुनिया है सतयुग त्रेता उस सतयुग सतयुग और त्रेता की दुनिया में मुख्य पार्टधारी कौन है? राम वाली आत्मा। ऐसे ही जो पतित दुनिया बनती है उन पतितों के बीच में सबसे जास्ती पतित कौन बनेगा?
राम वाली आत्मा।
क्योंकि जो राजा का बच्चा होता है वो कुसंग में आता है तो ज्यादा पतित बनता है ज्यादा दुष्ट बनता है या प्रजावर्ग के बच्चे ज्यादा दुष्ट बनते हैं? जो राजा का बच्चा होगा वो दुष्ट भी दुष्ट संग में आकर के जाती दुष्ट बनेगा।
तो अंत में आके पतित बनता है
तो 84वें जन्म में तो पतित बनता है।
रावण की दुनिया कैसे होगी?
आखिरी जन्म में होती है
तो अंत में होगी ना।
अंत में ही रावण की दुनिया का हेड है।
रावण की दुनिया तो बाबा द्वापर से शुरू हो जाती है।
द्वापर से रावण की दुनिया नहीं शुरू हो जाती न रावण को जलाना शुरू हो जाता है। द्वापर में फिर भी सात्विकता होती है। शास्त्र भी सच्चे होते हैं शास्त्रों के अर्थ भी सच्चे होते हैं। दस सिर वहाँ नहीं होते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पार्ट वहाँ नहीं होता। अहंकारियों का पार्ट रसिया में अंत में होता है या शुरुआत में होता है? द्वापर में
अंत में
होता है। माना कंप्लीट रावण कब कहेंगे? जब दस अवसर कंप्लीट हो जाए अपना पार्ट बजाने के लिए।